ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಸೀತಾರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹನುಮಾನ್ ಕೀ, ಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವಾನ್ ಕೀ, ಪ್ರೇಮ್ ಸರೋವರ ಧಾಮ್ ಕೀ, ಪ್ರೇಮ್ ಬಿಹಾರಿ ಜೀ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ, ರಾಧಾ ಪ್ರೇಮ ಬಿಹಾರಿ ಜೀ ಕೀ. ತೋ ಹಮ್ ಅಭಿ ಪ್ರೇಮ್ ಸರೋವರ ಆಯೇ ಹೈ, ಜಿಸ್ ಬಡೇ ವಿಶಾಲ್ ಅಷ್ಟಕೋನಿ ಕುಂಡ ಕೋ ಅಪ್ನೆ ದಾಹಿನೆ ಹಾಥ್ ಮೇ ರಖತೆ ಹುಯೇ ಹಮ್ನೆ ಬಾಯೇ ಹಾಥ್ ಮೇ ಇಸ್ ಮಂದಿರ್ ಮೇ ಪ್ರವೇಶ್ ಕಿಯಾ ಹೈ. ಇಸ್ ಕಥಾ ಕೆ ಬಾದ್ ಆಪ್ ಉಸ್ಕಾ ದರ್ಶನ್ ಕರೇಂಗೇ ಪ್ರೇಮ್ ಸರೋವರ ಕಾ. ತೋ ಜೋ ಕಥಾ ಮೇ ಬತಾನೆ ಜಾ ರಹಾ ಹೂಂ ವೋ ಪ್ರೇಮ್ ಸರೋವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೋನೆ ಕಿ ಪಹಲಿ ಕಥಾ ಹೈ. ರಾಧಾ ರಾಣಿ ಔರ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಜನ್ಮ ಜೊ ಹೈ ವೋ ಗೋಕುಲ್ ಮೇ ಹುವಾ ಥಾ. ಗೋಕುಲ್ ಮೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಜನ್ಮ ಹುವಾ ಥಾ ಔರ್ ರಾಧಾ ರಾಣಿ ಕಾ ಜನ್ಮ ಜೊ ಹೈ ವೋ ರಾವಲ್ ಗಾಂವ್ ಮೇ ಹುವಾ ಥಾ. ಕಹಾಂ ಪರ್ ಹುವಾ ಥಾ? ಸೋ ಯೇ ಸಬ್ ಗೋಕುಲ್ ಕಾ ಹಿ ಹಿಸ್ಸಾ ಹೈ. ಸೋ ಗೋಕುಲ್, ರಾವಲ್, ದಾವೂಜಿ, ರಮಣ ರೀತಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಘಾಟ್ ಯೇ ಸಬ್ ಗೋಕುಲ್ ಕಾ ಹಿ ಹಿಸ್ಸಾ ಹೈ. ತೋ ತೀನ್ ವರ್ಷ ಔರ್ ಚಾರ್ ಮಹಿನೆ ಕೆ ನಿವಾಸ್ ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ ರಾಧಾ ರಾಣಿ ಔರ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಜೊ ಹೈ ಉನ್ಕೋ ವಹಾಂ ಸೆ ಲೇಕೆ ಜಾಯಾ ಗಯಾ. ಅಪ್ನೆ ಸಮಯ ಕೆ ಜೀವನ್ ಕೆ ಸಮಯ ಕೆ ತೀನ್ ಸಾಲ್ ಚಾರ್ ಮಹಿನೆ ವೋ ವಹಾಂ ಪರ್ ರಹೆ, ವಹಾಂ ಪರ್ ಬಾಲ್ ಲೀಲಾಯೇ ಕಿ. ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಮೇ ನಂದ ಬಾಬಾ, ಉಪನಂದ ಬಾಬಾ ಔರ್ ಸಾರೇ ಬಡೇ ಗೋಪೋ ಕಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹುವಾ 84 ಖಂಬಾ ಇಸ್ ಸ್ಥಾನ ಪರ್. ಸ್ಥಾನ ಕಾ ನಾಮ ಹೈ 84 ಖಂಬಾ. ಪಹಲೆ ಭಿ ಕಥಾ ಮೇ ಹಮ್ನೆ ಉಸ್ಕಾ ಉಲ್ಲೇಖ ಕಿಯಾ ಥಾ. ವಹಾಂ ಪರ್ ರೋಜ್ ಸಂಜಾ ಕೋ ಸಾರೇ ಬಡೇ ಗ್ವಾಲ್ ಬಾಲ್ ಮಿಲ್ತೆ ಥೇ ಔರ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತೆ ಥೇ, ಉನ್ಕಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ, ಉನ್ಕಿ ಲೀಲಾ ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಣಯ ಭಿ ಲೇತೆ ಥೇ. ತೋ ನಿರ್ಣಯ ಹುವಾ ಕಿ ರಾಕ್ಷಸೋ ಕಾ ಆತಂಕ ಜೊ ಹೈ ವೋ ಬಢ್ ರಹಾ ಹೈ ಔರ್ ಹಮಾರೇ ದೋನೋ ಬಾಲಕ ಖತರೆ ಮೇ ಹೈ, ತಬ ಯಹಾಂ ಸೆ ಜಾನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ತೋ ಫಿರ್ ಉನ್ಹೊನೆ ಗೋಕುಲ್ ಸೆ ವೋ ನಿಕಲ್ ಗಯೆ. ಉಸ್ ಸಮಯ ರಾವಲ್ ಸೆ ವೃಷಭಾನು ಮಹಾರಾಜ್ ಭಿ ನಿಕಲ್ ಗಯೆ ಔರ್ ದೋನೋ ಕೆ ಜೊ ಕಾರ್ವಾ ಹೈ ವೋ ರಾಧಾ ಕುಂಡ ರುಕ್ತೆ ಹುಯೇ ಫಿರ್ ವೋ ನಂದಗಾಂವ್ ಬರ್ಸಾನಾ ಸ್ಥಾಯಿಕ ಹೋ ಗಯೆ. ತೋ ಬಚಪನ್ ಮೇ ವಹಾಂ ಪರ್ ತೋ ವೋ ಉನ್ಕಿ ಮುಲಾಕಾತ್ ರಾಧಾ ರಾಣಿ ಶಾಮ್ ಕಿ ಹುಯಿ ಥಿ. ಜಬ ರಾಧಾ ರಾಣಿ ಕಾ ಜನ್ಮ ಹುವಾ ಥಾ ತಭಿ ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಉನ್ಕಿ ಶಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಸೆ ಹಿ ಮುಲಾಕಾತ್ ಹುಯಿ ಥಿ. ನಾ ಉನ್ಹೊನೆ ಆಂಖೆ ಖೋಲಿ, ನಾ ಉನ್ಹೊನೆ ಕುಛ ಸುನಾ, ನಾ ಕುಛ ಕಹಾ, ಜೆಸೆ ಮನೋ ಅಂಧಿ ಗೂಂಗಿ ಔರ್ ಬಹರಿ ಬಾಲಿಕಾ ಹೈ. ಕ್ಯೂಂಕಿ ಉನ್ಕಾ ಗೌಲೋಕ್ ಧಾಮ್ ಕಾ ಪ್ರಣ ಥಾ ಕಿ ಹಮ್ ಕೇವಲ ಆಪ್ಕಾ ಹಿ ದರ್ಶನ್ ಕರೆಂಗೆ, ಆಪ್ಕಾ ಹಿ ಗಂಧ ಸೂಂಘೆಂಗೆ ಔರ್ ಆಪ್ಕಿ ಧ್ವನಿ ಸುನೆಂಗೆ, ತಬ ಆಂಖೆ ಖೋಲೆಂಗೆ, ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಆಪ್ಕಾ ಹಿ ದರ್ಶನ್ ಕರೆಂಗೆ. ತೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಫಿರ್ ವೋ ರೇಂಗ್ತೆ ರೇಂಗ್ತೆ ಹುಯೇ ಪಲ್ನೆ ಕೆ ಪಾಸ್ ಆಯೇ ಥೆ. ವೋ ಉನ್ಕಾ ಪ್ರಥಮ ಮಿಲನ್ ಥಾ ಔರ್ ಜಬ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಆಯೇ ತೋ ಉನ್ಕಾ ಪ್ರಥಮ ಮಿಲನ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಹುವಾ ಪ್ರೇಮ್ ವನ್ ಮೇ. ಉಸ್ಕಿ ಕಥಾ ಐಸಿ ಹೈ ಕಿ ರಾಧಾ ರಾಣಿ ಔರ್ ಅಪ್ನಿ ರಾಧಾ ರಾಣಿ ಔರ್ ಸಖಿಯಾ ಜೊ ಹೈ वो लुका छुपी का खेल खेल रहे थे प्रेम वन में, और उसका कैसा था कि सखियां एक एक गोपी को आंख पट्टी लगाती थी, गोल गोल घुमाती थी, छोड़ती थी, फिर बाकी सखियां छुप जाती थी और उसको जो पट्टी बंधी हुई है उसको दूसरे को पकड़ना है, फिर दूसरों को पट्टी बंधी जाएगी और वो छुप जाएंगे। ऐसे हम लोग खेलते थे बचपन में लुका छुपी का खेल। तो ठीक है, तो फिर किसी गोपी को पट्टी बांधी गई और सब गोपियां छुप गई, तो छुपने के लिए राधा रानी एक झाड़ी में गई, एकांत अंधेरी झाड़ी में। उधर उस झाड़ी इतनी सघन झाड़ी थी वो कि उसके अंदर घुसे पूरा ऐसा लगता कि रात का समय है, इतना घना अंधेरा था। तो जैसे ही राधा रानी उस घने झाड़ी के अंधेरे में घुसी तो उसको एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। वो अंधेरी झाड़ी में भी थोड़ा बहुत प्रकाश था अच्छा, और ये प्रकाश एक बालक के शरीर से आ रहा था, और वो बालक थे श्याम सुंदर जी, जो राधा रानी को ढूंढते 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 उस झाड़ी में आकर बैठे थे। और राधा रानी को जैसे ही प्रवेश करते हुए देखा, श्याम सुंदर जी बेहोश हो गए। उनके सौंदर्य को देखकर जो अनंत प्रेम की वृद्धि हुई उसका अनुभव करते भाव विभोर हो गए और बेहोश हो गए। तो राधा रानी को बड़ा कष्ट हुआ देखकर कि कोई मेरे लिए बेहोश हो गया है, उसको संवारना चाहिए, उसको जल छिड़कना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो वो गई उनके पास में और कुछ प्रयत्न कर रही थी कि इनको होश में लाया जाए। उतने में ललिता जी की आवाज़ आई, चलो 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 कोई और पकड़ी गई है, चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो राधा रानी थोड़ा सा व्याकुल हो गई थी उनको देखकर, इसलिए वो थोड़ा जाने में उसके पैर नहीं हिल रहे थे। फिर दो तीन बार जोर से उनको पुकार आई, आओ श्री जी आओ जल्दी आओ। तो फिर उनकी पुकार के बल से वो उस बेहोश बालक को छोड़कर वहीं चली गई। लेकिन जब चली गई तो एकदम उदास हो गई, क्योंकि जैसे श्याम सुंदर के मन में प्रेम प्रस्फुटित हो गया, प्रकट हो गया, तो राधा रानी भी प्रेम से व्याकुल हो गई थी उस समय। और जो छोड़ के आए तो उनको बाद में बहुत बुरा लगा कि मैं उनको क्यों छोड़ के आई, बेहोश अवस्था में थे, मैंने उनकी सहायता करनी चाहिए थी, लेकिन मैं छोड़ के चले आई। तो छोड़ के चली तो आई, लेकिन फिर वहीं से घर चली गई उदास होकर, आगे खेल में आगे ही नहीं बढ़ी वो। और बहुत देर के बाद में इनका भी खेल समाप्त हो गया, सब सखियाँ घर चली गई, और बहुत देर के बाद श्याम सुंदर जी को होश आया। वो भी देखा उन्होंने, वो बहुत दुखी और उदास हो गए थे, जिसको देखा उसके लिए उनके मन में बहुत तड़प निर्माण हो रही थी, लेकिन वो कहीं वन में दिखाई नहीं पड़ी, इसलिए वो उदास होकर उस तरफ नंदगांव में अपने घर चले गए। इस तरफ राधा रानी अपने महल में चली गई। लेकिन उसके बाद में राधा रानी बहुत ही उदास हो गई और कई दिन तक वो ना खेलने में आई, ना कुछ खा रही है, ना कुछ पी रही है, ना कुछ सो रही है, कुछ नहीं कर रही है। राधा रानी की माता जी बड़ी व्याकुल हो गई, बड़ी दुखी हो गई, हमारी लाली तो कुछ खाती नहीं पीती नहीं, बात नहीं करती, उदास 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 बैठी रहती है। और वहाँ पर श्याम सुंदर जी भी बाहर निकलना बंद कर दिए, ना गौचारण कर रहे, ना माखन खा रहे, ना नटखट लीला कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बस अपने बिस्तर में बड़े बड़े रो रहे हैं दिन भर। तो कीर्ति मैया बड़ी बड़ी उदास हो गई, और उसने ललिता जी को बुलाया, क्योंकि ललिता सबके लिए सब समस्याओं का समाधान है। तो ललिता जी को बुलाया और कहा, राधा रानी की ऐसी स्थिति है। तो जब स्थिति का वर्णन किया तो ललिता जी बहुत चतुर है, वो समझ गई कि, तो उन्होंने कहा माता जी को कि मुझे राधा रानी को एकांत में मिलना है, तब मैं उसका इलाज कर सकती हूँ। तो सब लोग ठीक है, जो करना है करो, सब लोग हट गए। राधा रानी को ललिता जी अकेले मिली। फिर क्या हुआ बताओ, क्यों उतने उदास हो, जिस दिन हम लुका छुपी खेल रहे तब से तुम उदास दिख रही हो, तब से दिखाई नहीं पड़ी, क्या बात है। तो फिर रोते रोते राधा रानी ने हृदय की बात गुप्त में बता दी कि वो जो बालक था जिसको देखकर मैं मोहित हो गई थी, मैं तो मेरा हृदय ही वो छीन के लेके गया, तब से ना मुझे अन्न लग अच्छा लग रहा है, ना जल अच्छा लग रहा है, ना नींद आ रही है, ना खेलने का दिल हो रहा है, मुझे कैसे भी करके उससे मिलाओ। तो फिर उसको वर्णन पूछती है राधा रानी, उसका वर्णन करती है, उसके वर्ण का, हर वस्तु का वर्णन करती है। तो राधा रानी को ललिता कहती है, हाँ मैं उसको जानती हूँ, मैं ज़रूर आपको उससे मिलाऊँगी, आप निश्चिंत रहो। और मैया से मिलती है और कहती है कि मैंने उसका रोग जान लिया है, मैं उसको पक्का उसका इलाज करूँगी। और सीधे पहुँचते नंदगांव, नंदगांव पहुँचते ही मैया भी सोच रही है कन्हैया का क्या करें, अभी इतना नटखट बालक था, खेलने वाला, उदास होकर बैठा है, पता है क्या रोग लग गया है इसको। अच्छा हो तो आ गई, कुछ कर लाला के लिए, देख मेरी एक ही शर्त है, मुझे एकांत में मिलना पड़ेगा उसकी बीमारी को निदान करने के लिए। बोलो कोई बात नहीं, आप जाओ। तो राधा रानी सॉरी ललिता जी कृष्ण के महल में गई, कोई नहीं था वहाँ पर, और कृष्ण से पूछा क्या बात है, तो कृष्ण ने भी वही कहानी बताई, लेकिन दूसरी तरफ से बताई कि मैं वहाँ झाड़ी में गया था और बैठा था, तो अचानक एक कन्या आ गई, उसको देखकर मैं इतना मोहित हो गया, इतना प्रेम जागृत हुआ कि मैं बेहोश हो गया, और उसके बाद मैं जब होश में आया तो वो कन्या वहाँ पर नहीं थी, पता नहीं स्वप्न में था मैं कि सत्य देख रहा था, लेकिन मुझे मेरे आँखों के सामने से वो छवि हट ही नहीं रही है, ना मुझे अन्न अच्छा लग रहा है, ना माखन अच्छा लग रहा है, ना मैं खेलने को जाना चाहता हूँ, मैं बस मर जाऊँगा अभी, ऐसे लग रहा है मुझे। तो ललिता कहती है कि निश्चित रूप से मैं तुम्हें उन्हें मिलाऊंगी। बाहर आती है, मैया से मिलती है कि मुझे इसे लेके जाना होगा, मेरा कुंड है नंदगांव में, ललिता देवी का कुंड है नंदगांव में, ललिता कुंड, मानो एक प्रकार की उनकी बरसाने की एम्बेसी है वो, दूतावास। नंदगांव में क्या खबर, क्या चल रहा है उसकी खबर वहाँ से मिलती है ललिता को। तो मैं वहाँ लेकर जाकर उसका नहलाना चाहती हूँ, कुछ मंत्र उच्चारण करूँगी, कुछ झाड़ा झाड़ी करूँगी तो वो ठीक हो जाएगा। तो वो सारे सखियों को बुला लेती है और कन्हैया जी को फिर ऑफिशियली लेके जाती है, कोई सा लुका छुपी का कार्यक्रम नहीं ले जाती है और अपने कुंड पे सब सखियाँ मिलकर उनको नहलाती है, और फिर वहाँ से लेके जाती है पहनावली गांव में। पहनावली गांव नंदगांव के एकदम उत्तर दिशा में है, तो वहाँ पर जाकर उनको दूल्हे के वस्त्र पहनाते हैं, इसलिए गांव का नाम क्या पड़ा है, पहनावली, जहाँ पर श्याम सुंदर को दूल्हा बनाया गया था। और वहाँ से गुप्त मार्ग से वो बरसाने की ओर चलने लगी, जो आज का रास्ता है उसका पैरेलल एक गांव में रास्ता है जहाँ पर कोई जाता आता नहीं, सब वहाँ यहाँ से जाते हैं, तो गांव से पैदल रास्ता है, वो पैनावली से सीधे बरसाने की ओर जाता है। तो वहाँ पर एक गांव आता है, उसका नाम है कजरोठा। तो वहाँ पर सारा श्रृंगार की करने के बाद में जो श्रृंगार का आखिरी काम होता है काजल लगाना, तो उस गांव में किया गया, उसका नाम पड़ा कजरोठा। और फिर श्रृंगार पूरा करके दुल्हा बना के उनको एक तरह से चुपचाप, लेकिन सारी सखियों ने मिलकर उनको इस प्रेम मन में लाया। ललिता ने कुछ सखियों को यहाँ भेजा था कि आप राधा रानी को कहना कि उससे मिलने के लिए मैं आपके लिए व्यवस्था कर रही हूँ, आप सज धज कर प्रेम मन में आ जाना। तो ललिता जी के निर्देश के अनुसार कुछ सखियों ने राधा रानी को उत्साहित करके उनका बहुत सुंदर श्रृंगार किया और उनको यहाँ पर लेके आए, और यहाँ पर उनका पहली बार मिलन हुआ। यह है राधा रानी कृष्ण का गोकुल छोड़ने के बाद में प्रथम मिलन स्थली, प्रेम वन। और फिर बहुत सुंदर सुंदर लीलाएँ यहाँ पर हुई है। ये बहुत ही उत्कट वन है, यहाँ पर बहुत सिद्ध संतों ने भजन किया हुआ है प्रेम सरोवर में, और प्रेम की लीलाओं का दर्शन किया है। जो हमारे परम पूज्य परमेश बाबा जी महाराज हैं, उनके गुरु जी प्रियाशरण जी महाराज, वो भी यही भजन करते थे, और यहीं पर उन्होंने उनको दीक्षा दिया राधे नाम का। और प्रियाशरण जी महाराज ने यहाँ पर बहुत लंबे समय तक भजन और निवास किया है। ये हुई एक कथा। दूसरी कथा इस स्थान की ऐसी है कि यहाँ पर सरोवर नहीं था उस समय, वन था पूरा। तो एक जगह पर बैठकर श्री कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे को निहार रहे थे, एक दूसरे की आंखों में निहार रहे थे। और जब ऐसे होता है प्रेमियों के बीच में तो फिर विश्व में क्या चल रहा है वो समझ में नहीं आता है, पूरा विश्व ही हो जाता है। दृष्टि में जो दिख रहा है वही सृष्टि होता है, हो जाती है उनकी। तो इस तरह से मग्न होकर, मुग्ध होकर राधा और श्याम सुंदर जी एक दूसरे को निहार रहे थे। और वहाँ पर सब ग्वाल बाल जो है वो खेल रहे थे दूर थोड़े से। उतने में सब ग्वाल बाल वहाँ खेल रहे, सब सखियाँ वहाँ खेल रही है, और ये दोनों एकांत में बैठे हैं, सबके बीच में एकांत में बैठे हैं। तो एक भंवरा बीच में आता है से करके दोनों के बीच में घूमने लगता है। एक प्रकार से दोनों की नज़र जो है वो काट रहा है बार बार, जो दृष्टि उनकी एक दूसरे में बंधी हुई है उसके बीच में वो भ्रमण कर रहा है अपना ध्वनि करते हुए। तो राधा और श्याम सुंदर को वो जो उनकी लीला चल रही थी परस्पर निहारने की, थोड़ा उसमें उनको बाधा हुई। तो श्याम सुंदर ने मधुमंगल को बुलाया, मधुमंगल उनका ब्राह्मण सखा है, अकेला ब्राह्मण है वो, सांदीपनी का सांदीपनी मुनि के भाई का बेटा और सांदीपनी की बड़ी बहन पूर्णमासी, पूर्णमासी उसको लेकर आई थी ब्रज में, पहले गोकुल में ला लेकर आई थी और बाद में फिर ये लोग भी वहाँ पर आए जब नंद बाबा यहाँ पर शिफ्ट हो गए। तो कृष्ण ने कहा हे मधु, इस मधु को हटा देना। क्या बोला? तो मधु आया यानी मधुमंगल आया, उसने मधु को बड़े ही कुशलता से हटा दिया और कहा कि श्याम सुंदर जी मधु चला गया है, मधु को मैंने हटा दिया है, मधु चला गया है। अभी मधु कृष्ण का भी नाम है मधुसूदन, और ओनली मधु भी नाम है क्योंकि वो शहद की तरह मीठे हैं, इसलिए एक नाम का मधु भी है। तो राधा रानी अभी भाव में है, बिल्कुल उच्च भाव में है, भाव विभोर अवस्था में है। तो वो सुनती है कि मधु चला गया, उसको क्या अर्थ होता है कि श्याम सुंदर जी चले गए। इसको कहते हैं प्रेम वैचित्र्य। अर्थ क्या होता है उसका? प्रेम वैचित्र का मतलब है विचित्र, विचित्र प्रकार का प्रेम है ये। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे आप, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अनएक्सप्लेनेबल, ऐसे कैसे हो सकता है प्रेम वैचित्र्य। तो उस प्रेम वैचित्र्य में क्या हो रहा है कि श्याम सुंदर जी सामने बैठे हैं लेकिन उसको लग रहा है कि वो गए, तो वो रोने लगी बहुत। तो श्याम सुंदर ने कहा क्यों रो रही वो? तो उन्होंने कहा आप गए इसलिए रो रही हूँ, तो मैं तो आपके सामने बैठा हूँ, लेकिन फिर भी वो विरह का अनुभव कर रही है। तो किसी ने कहा कि मधु चला गया तो बड़ा दुख हो गया उनको, वो रोती रही वो। फिर श्याम सुंदर को भी रोना आ गया। अगर आपके बगल में कोई बैठ कर रो रहा है तो हमको भी रोना आता है, हमको तो कुछ नहीं लेकिन किसी को रोते हुए देखकर हमको भी रोना आता है। तो राधा रानी के भाव को देखकर कृष्ण को भी रोना आया, वो दोनों ने खूब आंसू बहाए और दोनों के आंसू मिलकर ये प्रेम सरोवर बनाए। अभी आप लोग बोलेंगे कि आँख की जो अश्रु ग्रंथि होती है उसमें कितना पानी होता है, कितना पानी होता है बताओ? 25 ml, 20 ml, तो इतना बड़ा हौद कैसे बन सकता है? तो उसका उत्तर यह है, कृष्ण लीला को कभी भी बुद्धि के सर पर नहीं समझना चाहिए, श्रीमद् भागवत की लीला को कभी भी तर्क के आधार पर नहीं समझना चाहिए। वो भाव की लीलाएँ हैं, वो प्रेम की लीलाएँ हैं। जैसे बालक कृष्ण ने 7 दिन 7 रात इतने बड़े पर्वत को विस्तारित करके पूरे ब्रज को ढककर कैसे उठाया, ये साधारण बुद्धि के समझने की बात नहीं है। साधारण लौकिक बुद्धि जो है उससे पारलौकिक लीलाओं को समझना कठिन है, इसलिए साधारण बुद्धि को प्रयोग में लाना जरूरत ही नहीं है। आत्मा के स्तर पर इन कथाओं को ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो सुनते ही लगेगा बकवास है। और जैसे आपको लगेगा बकवास है तो आप कथा अपराध कर रहे हैं, और कथा अपराध करते ही कृष्ण का अपराध हो जाएगा, फिर आपको धाम से बाहर किया जाएगा। सब बातें सब लोगों को समझ में नहीं आती है। जैसे बालक पूछता है कभी मैया को, मैया मैं कैसे पैदा हो गया, तो मैया अभी ऐसे ही बोलती है, हमारे पापा का और तुम्हारे पापा का मेरा विवाह हो गया, फिर आप आ गए। अभी बालक को अगर समझाने लगेंगे क्या कैसे कैसे बालक का जन्म होता है तो समझ में आएगा उसको, नहीं समझ में आएगा। उसी प्रकार से इन लीलाओं के सामने हम बालक हैं, लीलाएँ कैसी होती है कैसी संपन्न होती है ये किसी को समझ में नहीं आता है। इसको केवल निष्ठा और श्रद्धा के नेत्रों से हम देख सकते हैं, निष्ठा और श्रद्धा के कानों से सुन सकते हैं, निष्ठा और श्रद्धा के पूर्ण बुद्धि से समझ सकते हैं। तर्क यहाँ पर नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ब्रज में कई सरोवर हैं, एक सरोवर मान सरोवर है वो जमुना जी के पार बेलवन के पास में है। वहाँ पर राधा रानी एक बार कृष्ण से रूठ गई थी और रूठ कर जमुना पार करके वहाँ बैठकर इतनी रोई, इतनी क्रोध के अश्रु रोई, उष्ण उष्ण अश्रु। वहाँ पर बहुत विशाल कुंड बना हुआ है, मान सरोवर इतना विशाल है और इतना दिव्य है वो कुंड कि ललिता विशाखा ने शंकर जी को कहा था कि अगर आपको रास में सहभाग लेना है तो आपको मानसरोवर में स्नान करना होगा, तब आपको गोपी शरीर प्राप्त होगा, फिर आपको रास में प्रवेश मिलेगा। तो शंकर जी महाराज एक छलांग लगाकर जमुना जी के पार गए और मानसरोवर में डुबकी लगाई तो वो गोपी शरीर प्राप्त करके लौट के आए। अब ये भी तर्क के बाहर है, कोई पुरुष पानी में डूबता है तो स्त्री बन के बाहर आता है, नारद मुनि को कुसुम सरोवर में डुबाया गया तो वो नारदी गोपी बने, ऐसे ऐसे लीलाएं ब्रज में होती है। तो ये सब दिव्य लीलाएं हैं, इन दिव्य लीलाओं को समझने के लिए दिव्य चेतना होनी चाहिए और ये दिव्य चेतना हमें भगवान नाम का जप करने से मिलती है। भगवान नाम का जप करने से दिव्य स्तर पर हम कुछ समय के लिए क्यों न क्यों हो स्थित हो जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, ऊपर रहते हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर ऊपर ही रहने लगते हैं। फिर बहुत अच्छा जप करेंगे तो दिव्य चेतना में ही रहते हैं, फिर उस दिव्य चेतना में हमें सब डाली डाली पाती पाती में शाम दिखाई पड़ते हैं, कण कण में शाम दिखाई पड़ते हैं, घट घट में शाम दिखाई पड़ते हैं, हर व्यक्ति में शाम दिखाई पड़ते हैं। वो चेतना जो है कि सब में ब्रह्म दर्शन हो रहा है, तो उस स्थिति में हम इन लीलाओं को समझ सकते हैं तो उसका सही आस्वादन भी कर सकते हैं। अभी तो केवल कथा के रूप में सुन रहे हैं लेकिन श्रद्धा से सुनना चाहिए, मनोरंजन के भाव से नहीं सुनना चाहिए, श्रद्धा से ही सुनना चाहिए, आदर से सुनना चाहिए। आचार्य बताते हैं श्रद्धा और आदर होना बहुत ज़रूरी है कि हम इस कथा को सुनने के लिए अभी योग्य नहीं है फिर भी सुनने को मिल रहा है तो बड़े आदर और धन्यवाद की भावना से सुनना चाहिए, कहने को मिल रहा है धन्यवाद देना चाहिए, तब जाकर इन कथाओं में छुपा हुआ जो दिव्य रहस्य है वो धीरे धीरे हमको समझ में आएगा। और ये अष्टकोणी बहुत सुंदर कुंड है, ऐसा सुंदर कुंड आपको ब्रज में कहीं नहीं मिलेगा। तो उसमें आंसुओं का संबंध है ना, यहाँ पर अश्रुओं की लीला है, इतने प्रेम के अश्रु बहे हैं। तो वो कहते हैं ना, नयनम गलदश्रु धारया, वदनम गदगद रुद्रया गिरा, पुलकैर निचितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक के पांचवें श्लोक में ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, कब आपका नाम उच्चारण करते ही मेरे नेत्रों से अश्रु आएंगे, कब मेरा कंठ गदगद होगा, कब मेरा शरीर रोमांचित हो जाएगा, ये प्रश्न कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में। इसका अर्थ क्या हुआ, जब तक हृदय में काम वासना है, धन की लालसा है, कीर्ति की लालसा है और बहुत सारी इच्छाएं, अनंत इच्छाएं हैं, तब तक भगवान का नाम का जप करने से नेत्रों से आंसू नहीं आते हैं, क्योंकि हृदय जो है वो पत्थर जैसा रहता है, हृदय पिघलेगा तो आंखों में से आंसू आते हैं। जब तक हृदय में से ये पत्थर करने वाले जो विग्रह अनर्थ हैं वो जप के सिंचन से नष्ट नहीं होते हैं, तब तक आंखों से आंसू आने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन हृदय जब जप करके और साधना करके मुलायम हो जाता है, कोमल हो जाता है, तब फिर भगवान का नाम लेते ही अश्रु आने लगते हैं, भगवान की कथा सुनते सुनते कंठ गदगद होता है। बोल नहीं सकता आदमी, भाव विभोर हो जाता है। यानी कठिन हृदय व्यक्ति जो है वो कोमल हृदय बन जाता है। तो इसलिए केवल यहाँ पर आना पर्याप्त तो नहीं है, आप सब लोगों को जप करना चाहिए भगवान के नाम का। ये कैसा है ना, हमारा और इन लीलाओं का अगर संपर्क होना है और समझना है तो एक ही माध्यम है, भगवान नाम के जप का माध्यम। वो जब तक कार्यान्वित नहीं होता है तब तक सारी कथाएँ कथाएँ रहेगी, हम अपनी जगह रहेंगे। हमें अगर उस कृपा को अनुभव करना है तो निरंतर भगवान नाम का कीर्तन करना होगा। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। मैं तो दुर्भाग्य से इस जन्म मृत्यु के सागर में गिर पड़ा हूँ, मुझे उठाइए इस भयंकर मृत्यु सागर से और आपके चरणों में रख दीजिए। ऐसी आर्तता आनी चाहिए, ऐसी आर्त हृदय होना चाहिए, ऐसा व्याकुल हृदय होना चाहिए, भगवान के लिए व्याकुल होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे आपके पलके नीचे झुकेंगी कथा समाप्त हो जाएगी, ये ध्यान में रखना उस बात का। जहाँ तक श्रोताओं को उत्साह है कथा तब तक ही चलती है। जब निद्रा देवी अधीन हो जाती है और आप आगे बढ़ते हैं, उठते नहीं हैं, खड़े नहीं होते हैं, तो कथा विश्राम प्राप्त करती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हृदय को कोमल किए बिना इन कथाओं को सुनकर कुछ लाभ नहीं है। तो कथाएं मनोरंजन बनकर रहेगी। सबसे पहले भगवान के नाम में अपने आप को स्थिर करो, उसमें निश्चय बनाओ, उसकी योजना बनाओ, संकल्प करो, निश्चय पूर्वक संकल्प को पूर्ण करो। जो 50 बार बरसाने में आएंगे तो सुखे ही रहेंगे। इसलिए आपको विनती है कि ऐसे यहाँ पर अनंत उत्कट स्थान है जहाँ पर बहुत उत्कट लीलाएँ हुई है। वो गहबर बन जहाँ पर हम लोग भी आपको दोपहर में प्रसाद पाने के लिए भेज रहे हैं, वो तो अनंत उत्कट लीलाओं का स्थान है। विचार करना भी मुश्किल है, ऐसी लीलाएँ वहाँ पर है। तो वो सब लीलाओं को समझना ही जीवन का उद्देश्य है और उसकी शुरुआत जो है वो श्रद्धा से, सत्संग से, भजन से होती है। और जब भजन में मन लगता है वो सेवा करने से लगता है। अगर भजन में आपको रुचि नहीं आ रही है तो आपको सेवा करनी चाहिए। तो सेवा करने से भजन में रुचि आएगी, भजन में रुचि आएगी तो हृदय कोमल बनेगा। फिर आपको ये भावनाओं का, दिव्य भावनाओं का उदय होगा, रुचि निर्माण होगी, आसक्ति निर्माण होगी, टेस्ट आएगा इस सब चीज़ों में। और उस टेस्ट आने का लक्षण क्या है, बाकी सब सांसारिक वस्तुओं में टेस्ट खत्म हो जाएगा आपका। जैसे जॉन्डिस हुए व्यक्ति को भोजन में टेस्ट खत्म हो जाता है, स्वाद ही लगता नहीं है, वैसे भगवान के नाम की रुचि उत्पन्न होने के बाद में भौतिक सांसारिक चीज़ों का स्वाद खत्म हो जाता है। इसलिए जब कुछ लोग ये सुनते हैं तो वो जानबूझकर भक्ति में नहीं आते हैं, क्योंकि डर लगता है उनको कि अगर मैं ज़्यादा ही घुस गया इसके अंदर तो फिर मेरा सांसारिक व्यवसाय में रुचि कम हो जाएगी, धन कमाने में, मेरे प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए और मेरे प्रोफेशन में कीर्ति प्राप्त करने के लिए मेरा जो प्रयास है उसका वो इच्छा ही खत्म हो जाएगी। इसलिए कुछ लोग सब जानते हैं लेकिन आते नहीं हैं उसके अंदर। हमारे हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर्स हैं ऐसे, वो प्रार्थना चलती है उनकी हमारी, तो वो लिफ्ट के पास खड़े रहते हैं और लिफ्ट आते चले जाते हैं। तो कई बार हमने पूछा, डॉक्टर साहब ऐसे क्यों करते हैं आप, बोलते हैं आप लोगों के अंदर मैं आ गया तो मैं मेरा प्रोफेशन छोड़ दूंगा, फिर मैं ऑपरेशन ही करने कर पाऊँगा, फिर पढ़ने की, आगे बढ़ने की और कॉन्फ्रेंस करने की, लेक्चर देने की सब निजी विषय समाप्त हो जाएगी। ऐसे भी विचित्र लोग होते हैं। ये टेम्पररी जो वस्तुएं हैं में बहुत रुचि है उनको और वो छोड़ने की इच्छा नहीं है, जो परमानेंट वस्तु मिल रही है उसको प्राप्त करने की हिम्मत नहीं उनके अंदर। ये बहुत विचित्र प्रकार की माया है। संसार जो है जितनी श्रद्धा उसमें आप रखेंगे उतना वो आपको धोखा देते जाएगा, उतना आपका विश्वासघात करेगा संसार। और जितना आप भगवान पर विश्वास रखेंगे और उनकी ओर बढ़ेंगे कोई आपको धोखा प्राप्त नहीं होगा, उल्टे धोखे से आप मुक्त हो जाओगे और कोई आपको धोखा दे भी नहीं सकता उसके बाद। एक बार भगवान को आपने अपना मना लिया तो दुनिया की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति आपको धोखा नहीं दे सकती है। इसलिए प्यार करना है तो भगवान से करो और किसी वस्तु से मत करो, क्योंकि प्यार करने लायक एक ही व्यक्ति है, वो है कृष्ण भगवान। और उसके आगे की बात, दुनिया में जितने रिश्ते होते ना वो सब टेम्पररी होते हैं। रिश्ते होते भी हैं तो वो परिणाम कारक नहीं होते हैं, कभी कभी रिश्ते होते भी हैं तो न होने के बराबर होते हैं। बहुत कम लोगों को इस दुनिया के रिश्ते में प्रेम प्राप्ति अनुभव होता है, और जिसको प्रेम प्राप्ति का अनुभव होता है उसको भी कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद रिश्ता तो वही है, व्यक्ति भी वही है, लेकिन प्रेम कहीं गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता क्या हो गया। फिर जब प्रेम समाप्त हो जाता है, हमारी श्रद्धा टूट जाती है, तो क्या होता है, आंसू आते हैं, दुख के आंसू आते हैं, गर्म गर्म आंसू आते हैं। या तो जिस पर प्रेम करते हैं वो इस दुनिया से चला जाता है, या तो है फिर भी प्रेम नहीं रहता, दोनों तरफ से आंसू आते हैं। और कहते हैं शास्त्र में लिखा है, ध्यान से सुनना इस बात को, विश्व के रिश्तों को जब हम खो बैठते हैं, या तो मृत्यु की वजह से, या तो हार्ट ब्रेक की वजह से, या तो झगड़े की वजह से, या किसी वजह से, और हम रोते हैं, तो हमारी दुनिया के प्रति जो आसक्ति है वो और गहरी हो जाती है। आपको समझ में है, दुनिया के रिश्ते जब टूट जाते हैं उसके कारण जब आंसू आते हैं तो वो आंसू हमें दुनिया के बंधन में और गहराई में बांध देते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं, बिल्कुल उल्टा कहते हैं जो हम सोचते हैं, आचार्य कहते हैं अगर आंसू ही बहाना है तो वो कृष्ण के लिए रिजर्व रखना, जब बहाने का समय आएगा तो केवल उनके लिए ही बहाना, और कोई व्यक्ति इस विश्व में आंसू बहाने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि सब रिश्ते यहाँ पर टेम्पररी हैं, कुछ समय आनंद देंगे, फिर कर्तव्य बचता है, फिर कब समाप्त होगा इसकी वेट करते रहते हैं। रिश्ते वही हैं, व्यक्ति भी वही है, लेकिन दम नहीं रहता उसके अंदर कुछ। ये विश्व के हर अनुभव का अनुभव है, जो भी अनुभव आप लेते हैं शुरू में थोड़ा सुख मिलता है, बाद में अनंत काल तक दुख मिलता है उससे। सब लोगों को ये विनती है कि हमारे आंसू बहुत कीमती है, वो मूल्यवान अश्रु जो है केवल कृष्ण के लिए बहाना, या कृष्ण के भक्तों के लिए बहाना। अगर कोई प्रेमी भक्त जो वैष्णव जन के निकल जाते हैं तो भक्तजन रोते हैं, ऐसे भक्तजनों के लिए जब हम आंसू बहाते हैं, या ऐसे भगवान के लिए जब हम आंसू बहाते हैं, तो हमारा भाव बंधन की माया का जो जाल है वो नष्ट हो जाता है। जो भौतिक विश्व का बंधन है जो हमको बांध के रखता है जन्म मृत्यु के सागर में, वो टूट जाता है। वही आंसू हैं, वही अश्रु ग्रंथि है, वही आंखें हैं। एक भाव से अश्रु निकलते हैं तो दुनिया की गहराई में फंस जाते हैं, दूसरे भाव से अश्रु निकलते हैं तो उस विषय निकल जाते हैं, तर जाते हैं। हर कार्य विश्व का ऐसा ही है, अपने लिए करेंगे बंधन में फंसते जाएंगे, वही कार्य भगवान के लिए करेंगे तो मुक्त होते जाएंगे। इसलिए कार्य इंपॉर्टेंट नहीं है, भाव इंपॉर्टेंट है, और वो भाव निर्माण करने के लिए भगवान नाम का शस्त्र आपको दिया गया है। इसलिए कभी रोने को आएगा ना, केवल भगवान के लिए रोना। Nobody is worth our tears except श्री कृष्णा। और जब ऐसे आंसू बहते ना तो फिर जीवन धन्य हो जाता है। और आपको यहाँ पर एक और कुंड दिखाएंगे, वो भी प्रेम वैचित्र्य, विचित्र प्रेम के लिए लाए वो। संक्षेप में वो कुंड का नाम प्रेम विवल कुंड है। तो राधा रानी शुक्रवार के दिन देवी की पूजा करने को जा रही थी तो कृष्ण रास्ते में मिलते हैं और कहते हैं कहाँ जा रही हो, तो वो कहती देवी की पूजा करने का माता जी का आदेश है, इसलिए तो देवी को ढूंढ रही, मतलब यही तो है जाओ। वो संकेत वन के पास खड़े थे तो राधा रानी भोली भाली बेचारी तुरंत गई ढूंढ के आई, कहीं नहीं मिली उनको देवी। फिर बाहर आई रास्ते पर तो वही श्याम सुंदर जी खड़े हैं, तो क्या हुआ देवी की पूजा हुई, तो नहीं देवी मिली नहीं, सब ढूंढ के आए, अरे मैं अभी दर्शन करके आया, जाओ दोबारा अभी उधर ही तो है, वापस जाती है। फिर ढूंढ के आते हैं और फिर कोई देवी नहीं है, वापस लौट के आती है, तो फिर वही वापस बाहर आती है तो फिर वही श्याम सुंदर खड़े हैं, बोले हो गई पूजा तुम्हारी, बोले नहीं देवी तो है ही नहीं, बोले जाओ तीसरी बार गई बेचारी वो। तीसरे बार जब गई तब उनको तुरंत देवी मिली, जहाँ पर दो बार वो ढूंढ के आई थी वहाँ पहले नहीं मिली थी, वही मिली देवी। तो झट से अपना वो दिया सलाई जो भी कुछ है दीपक जलाने का सामान निकाला और आरती शुरू किया, बड़े प्रेम से आरती कर रही है। अचानक आरती करते देवी हंस पड़ती है, देवी स्माइल्स, और देवी ने आंखें भी मिचती है, शी ब्लिंक्स एंड शी स्माइल्स। तो राधा रानी को बड़ा आश्चर्य होता है, देवी जब हंसती है तो राधा रानी भी हंसती है, उनको समझ में आता है देवी और कोई नहीं, श्याम सुंदर स्वयं देवी। और इस प्रेम भरे भाव में उनकी आंखों में प्रेम के अश्रु आते हैं, आनंद अश्रु। तो राधा रानी की आंखों में आनंद अश्रु आते हैं तो देवी बने हुए कृष्ण के भी आंखों से आंसू आते हैं। इसको कहते हैं प्रेम विवलता, विवल हो जाते हैं। विवल का अर्थ क्या होता है? भाव विभोर हो जाना, एकदम गदगद हो जाना, दोनों गदगद हो जाते हैं प्रेम से। अरे ये कैसे विचित्र लीला है, आपने आज देवी का स्वरूप लिया, हाँ मैं आपसे यहाँ पर ये लीला करना चाहता था। तो भगवान विवला देवी बन गए और जो दोनों के अश्रु भये उधर भी कुंड तैयार हो गया, बहुत पास में है यहाँ से, उसका नाम है प्रेम विवल कुंड। बहुत लोगों को पता नहीं है, यहाँ के लोगों को भी पता नहीं है, वो प्रेम विवल कुंड है, वहाँ पर भी प्रेम की विचित्रता है। ऐसे कई कुंड है जहाँ पर विचित्र प्रकार का प्रेम अश्रु के माध्यम से निर्माण हुआ है, अश्रु के माध्यम से कुंडों को निर्माण किया है। तो ऐसे जल को स्पर्श करने से और प्रार्थना करने से वो प्रेम जो है वो प्राप्त हो सकता है। जिस भाव से वो जल का निर्माण हुआ है, कुंड का निर्माण हुआ है, उस भाव को अगर आप समझते हो, कम से कम दिमाग के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर तो आगे समझेंगे, लेकिन कम से कम श्रद्धा से हम स्वीकार करते हैं उस बात को, वो जल को स्पर्श करते हैं, उसका आचमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रेम की कृपा हो सकती है। नहीं तो फिर वो पड़ा हुआ जल है, सड़ भी रहा है, लगे आपको अरे गंदगी है, मौत आ गया उसके ऊपर, MOTH, और हर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आचमन के लिए भी अच्छा नहीं है, ये सब सोच के बैठेंगे तो कुंड अपनी जगह पर रहेगा, हम अपनी जगह पर रहेंगे और यहाँ आने का कुछ लाभ नहीं होगा। यहाँ पर केवल उन लोगों को आना चाहिए जिनको भगवान पर अटूट श्रद्धा है, कोई शंका पंत किंतु परंतु मन में नहीं है, कोई शंका पर बेस्ट प्रश्न नहीं है मन में, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब झूठ है, बकवास है। श्रद्धा है तो बरसाने आओ, नहीं तो मुंबई अच्छा है बहुत, आपकी सारी श्रद्धाओं को पूर्ण करने के लिए मुंबई बहुत पर्याप्त मात्रा में खड़ा है, उसी से कनेक्ट करो और वहीं रहो। लेकिन वहाँ पर अगर दिल उठ गया आपका, वहाँ पर अभी कर रहे अनुभव आ गए हैं, तो ब्रज में आ जाओ, फिर यहाँ पर प्रेम का अनुभव होगा। कैसे लोग प्रेम करते हैं, कैसे भगवान पर करते हैं, भक्तों पर करते हैं, इसके कई उदाहरण मिलेंगे आपको, यहाँ पर प्रेरणा मिलेगी। फिर लीला स्थलियों में जाओ, भगवान की प्रेम लीलाओं को सुनो, फिर हृदय शुद्ध होते जाएगा। तो हम आपसे और भगवान से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग उस प्रेम को प्राप्त करें जो देने के लिए भगवान आए हैं। ये मंदिर जो है प्रभु रामचंद्र का मंदिर है, तो आप सोचेंगे प्रेम सरोवर में राम जी क्या कर रहे हैं। यहाँ पर राम रसदास जी महाराज रहते हैं, जिनको मैं भी मिल के आया, बड़े उच्च संत हैं, यहाँ पर निवास करते हैं, और अयोध्या में प्रभु राम के धाम में रहते थे पहले। तो अपने रामलला को लेकर एक बार आए थे घूमते घूमते, तो कई दिन रहे, उनको लगा फिर चलना चाहिए, तो प्रभु भी साथ चलने लगे उनके, तो कहा तुम जा रहे हो तो मैं भी जा रहा हूँ, तो प्रभु आपकी क्या इच्छा है। प्रभु ने कहा कि आप यहीं रहो, तो वो महाराज जी यहीं रह गए, बड़े देवी महात्मा हैं। तो उन्होंने राम का मंदिर बनाया, हनुमान जी का मंदिर बनाया, और अयोध्या के राम लला के प्रतिष्ठापना में भी थे, एकदम गदगद भाव से मुझे बता रहे थे उनका अनुभव। तो उनके जीवन में भी कई चमत्कार हुए हैं, बहुत भयंकर चमत्कार, हनुमान जी की कृपा, राम जी की कृपा। तो भगवान बड़े दयालु हैं, और जो उनसे प्रेम करते हैं वो उनसे प्रेम करते हैं, और फिर सारा सत्य जो है वो प्रकाशित हो जाता है। जब सत्य प्रकाशित होता है तो किसी चीज़ का दुख नहीं होता है, ना कुछ खोने पर दुख होता है, ना कुछ पाने पर दुख होता है। जो भगवान में बसा हुआ है उसको ना सुख है ना दुख है, उसको केवल आनंद मिलता है। क्योंकि आनंद का कोई जोड़ी नहीं है, सुख की जोड़ी है उल्टी, दुख दुख की जोड़ी है उल्टा सुख। सब द्वंद्व है दुनिया में। और भगवान अर्जुन को कहते हैं द्वंद्व से मुक्त हो जाओ, मान अपमान से मुक्त हो जाओ, सर्दी गर्मी से मुक्त हो जाओ, सारे द्वंद्व से मुक्त हो जाओ, तब मेरी पहचान होगी आपको। जब द्वंद्व से उठो ऊपर उठोगे तो मेरी प्राप्ति होगी। तो कहते हैं जब कोई भी भगवान का स्वरूप यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पर जो अधिष्ठाता भगवान है उनका भाव ग्रहण कर लेता है। तो प्रभु रामचंद्र अयोध्या के हैं, बरसाना में आके बसे हैं तो बरसाना के भाव में रहते हैं। नरसिंह भगवान नरसिंहाचलम में से खूंखार भाव में आते हैं, मायापुर में स्थापना किया दयालु हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं, उनका प्रभाव है वहाँ पर। तो हमको तो ये सब लीला समझ में नहीं आती है, वो तो भगवान और देवी भक्तों के बीच में चलती रहती है, हम तो केवल दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं बस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।